This is an ABP Life podcast.
Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh. Richard. Oh, wow.
इन आवाजों को शायद आप अब तक पहचान गए होंगे और इन लोगों को भी आप जान गए होंगे अगर कल से पहले आपको इनके बारे में जरा भी भनक नहीं थी। ये क्लिप थी कल हुए ऑस्कर अवार्ड्स की, जिसमें अपनी बीवी की बीमारी पर किए गए एक भद्दे मजाक पर विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को एक सनसनाता थप्पड़ ही जड़ दिया। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या था वो मजाक, क्यों जड़ा विल ने क्रिस के मुंह पर चाटा और क्या होता है एलोपीशिया, जो बीमारी है विल की पत्नी जेडा को, और गौर फरमाएंगे कि जो हुआ वो कितना सही था और कितना गलत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं साहिबा खान और आप सुन रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट की पेशकश FYI, यानी कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो जी, कॉन्टेक्स्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है, और कौन सा अगर मैं नहीं बताती तो आपको नहीं पता पड़ता। ऑब्वियसली आपको पता है, देयर सो मच सोशल मीडिया अराउंड अस। मगर थोड़ा और डिटेल में बताती हूँ कि असल में हुआ क्या। क्रिस रॉक एंकरिंग कर रहे थे ऑस्कर में, जैसे हमारे यहाँ कपिल शर्मा कर लेते हैं, शाहरुख खान कर लेते हैं, सैफ अली खान कर लेते हैं, वरुण धवन कर लेते हैं इत्यादि। तो क्रिस पेशे से जो है वो बहुत मशहूर, बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, और ऑस्कर्स में वो सबको रोस्ट करते हैं, यानी कि लोगों की बेइज्जती करके बाकी बचे लोगों को हंसाते हैं। ठीक है, अब रोस्ट तो हमने भी देखा था रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर वाला। हाँ, उसके बाद भले ही AIB यानी ऑल इंडिया बीप बंद हो गया, कई केस भी उन पर फाइल किए गए, उनके सूट्स उनके ऊपर फाइल किए गए, और तब से हमने ठान ली कि भैया कुछ भी हो मगर रोस्ट परफॉर्म नहीं करना है भारत में। अब तो खैर रोस्ट छोड़िए, नॉर्मल कॉमेडी शोज में ही पुलिस आ जाती है, खैर वो अलग बात है, इसी बात पर अभी अड़े रहते हैं, चर्चा करते हैं। तो हुआ ये कि इस ऑस्कर वाले रोस्ट में क्रिस ने कहा कि उन्हें इंतजार रहेगा GI Jane 2 में स्मिथ की बीवी जेडा को देखने का। जिन लोगों ने GI Jane 1 देखी है उन्हें पता होगा कि उसमें डेमी मूर नाम की बड़ी एक्ट्रेस है, और उसमें वो गंजी है, यानी कि उनके बाल नहीं है। तो क्रिस ने बेसिकली जेडा का मजाक उड़ाया, क्योंकि वो भी बगैर बालों के ही खुद को कंफर्टेबल इस समय महसूस करती हैं, उन्होंने बाल कटवा रखे हैं। लेकिन जेडा के लिए ये मजेदार नहीं बल्कि मजबूरी है, क्योंकि उन्हें एलोपीशिया नाम की बीमारी है। अब क्या होता है एलोपीशिया और कैसे होता है, ये एक एक्सपर्ट से ही पूछना पड़ेगा। तो हम बात करने वाले हैं दोस्तों डॉक्टर गुंजन वर्मा से, जो एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं HCMCT मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका में हैं, और ये हमें बताएंगी कि एलोपीशिया क्या होता है, कैसे होता है, क्या हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, नहीं तो क्योर कर सकते हैं। तो ये सब बातें सिंस एक एक्सपर्ट ही बता सकता है, तो आज हमें गुंजन बताएंगी। तो हाय गुंजन, वेलकम टू अ पॉडकास्ट FYI।
हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय लिसनर्स हियर। सो जैसे कि साहिबा ने आपको बताया कि इतना बड़ा इंसिडेंट एकेडमी अवार्ड्स में हुआ, सो एलोपेशिया के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे, मैं चाहूँगी कि लोग इसके बारे में थोड़ा सा जाने। अपनी प्रॉब्लम के बारे में जब हमें थोड़ा सा आइडिया होता है तो हम अपने डॉक्टर के पास भी पहुँचने में थोड़ा समय, सही समय पे आ सकते हैं, ताकि हम अपनी बीमारी को ठीक से डायग्नोस कर सकें एंड उसका इलाज भी सही समय पे स्टार्ट कर सकें। ओके, सो बेसिकली एलोपेशिया क्या है? एलोपेशिया का लिटरल मीनिंग ये है कि लॉस ऑफ हेयर्स। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के हेयर्स हैं, स्कैल्प पे हेयर्स हैं, बॉडी पे हेयर्स हैं, बॉयज में बियर्ड एरिया पे हेयर्स हैं, जो कि हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से अपनी वहाँ पर ग्रो करते हैं। सो किसी भी एरिया में किसी भी वजह से हेयर लॉस हो सकता है, उसी को हम बेसिकली एलोपेशिया टर्म का नाम देते हैं, कि अचानक से बालों का उड़ जाना, अचानक से बाल एक जगह से गायब हो जाना। अब ये कई तरीके से हमारे पास प्रेजेंट करता है। सो बेसिकली कोई बीमारी या कोई कारण जब इसके पीछे छुपा होता है तो हम उसको स्कारिंग एलोपेशिया का नाम देते हैं। स्कारिंग मीन्स सिकाट्रिशल एलोपेशिया। स्कारिंग मीन्स जब बाल झड़ते हैं, अपनी जड़ से जब जाते हैं तो स्कैल्प पे हमें एक बीमारी का साइन दिखाई देता है, ऐसा कभी नीले रंग के हमें कुछ निशान दिखाई देते हैं, कभी काले रंग के कुछ निशान दिखाई देते हैं। एंड यूजुअली ये वाला जो एलोपेशिया होता है, स्कारिंग, ये गंभीर बीमारियों के साथ एसोसिएटेड होता है। सो बेसिकली स्कारिंग इज बिकॉज ऑफ सम मेजर डिजीज, जिसकी वजह से बाल की जड़ें जो हैं वो चली गई हैं, एंड ये ज्यादातर गंभीर बीमारियों के साथ एसोसिएटेड होता है। जैसे डीएलई में ये देखा जाता है, या हमारे लाइकन प्लेनर बीमारी है उसमें ये देखा जाता है। एंड यूजुअली उसमें बाल दोबारा आने की संभावना कम या ना के बराबर होती है, इवन आफ्टर द कोर्स ऑफ मेडिसिन। सो देर उसका एक अलग ही सिनेरियो है कि उसकी बहुत ही जो दवाइयां हैं वो अलग हैं, वो उसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करना सही नहीं समझती। बट ये थोड़ा सा खतरनाक वाला एलोपेशिया है। बट एक और एलोपेशिया होता है जिसको हम नॉन स्कारिंग एलोपेशिया बोलते हैं या डिफ्यूज एलोपेशिया बोलते हैं। इसके भी बहुत से कारण होते हैं कि एक होता है टिलोजन एफ्लुवियम, जिसमें कि बाल पूरे सर से डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से जाते हैं, जिसमें कि ज़्यादातर पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि हमने बाल को कॉम किया और हमारे कंघे में बाल आ गए, या हम जब सोए तो हमारे तकिए पे बाल हमें दिखे। इसी तरीके से एक और तरीके का एलोपेशिया होता है जिसको हम ये टिलोजन एफ्लुवियम पोस्टपार्टम पीरियड में भी देखा जाता है, उसको हम पोस्टपार्टम एलोपेशिया भी बोलते हैं, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन्स की डिलीवरी के कुछ समय बाद ये डेवलप होता है, क्योंकि सारा जो न्यूट्रिशन है हमारे बालों की जड़ों को ग्रो करने के लिए वो हमारी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर चुकी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, तो उसमें उसके बाद फीमेल्स के बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारे डिफ्यूज एलोपेशियाज हैं। इसके अलावा एक स्पेशल टाइप का एलोपेशिया होता है जिसका कि नाम है एलोपेशिया एरियाटा, जो कि अभी जो हमने आजकल वीडियोस में यूट्यूब पे या अपने FB या इंस्टा पेजेस पे हमने वीडियो सर्कुलेट करते हुए देखा, जो कि विल स्मिथ की वाइफ को जिससे वो सफ़र कर रही हैं, तो बेसिकली व्हाट वाज दैट, इट इज़ एलोपेशिया एरियाटा। तो इसमें क्या होता है कि बालों का एक पैची लॉस होता है, कहीं कहीं से बाल किसी किसी एरिया के डिफ्यूज पैची एरिया में स्कैल्प से या हमारी बियर्ड एरिया से या इवन इनफैक्ट बॉडी हेयर्स को भी ये इन्वॉल्व कर सकता है, तो वहाँ से बाल अचानक से बिकॉज ऑफ सम इम्यून मैकेनिज्म विच इज समटाइम्स अननोन टू इवन डॉक्टर्स, हम उसको पता नहीं लगा पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज कि ये ऑटो इम्यून एक कॉज है जिसकी वजह से हमारे जो रूट्स हैं उनको ये सिग्नलिंग गलत जा रही है कि वो बाल ग्रो करना बंद कर
जी।
तो उनकी सिग्नलिंग में डिफेक्ट आ गया, उनका थोड़ा सा ये उनका मैकेनिज्म खराब हो गया, तो इसकी वजह से वो बालों को उगाना उस स्पेस से बंद कर देती हैं। तो अचानक से पेशेंट को दिखेगा या उसके रिलेटिव या उसके फ्रेंड्स को दिखेगा कि एक पार्ट है सर में, या वो अगर कॉम कर रहे हैं या अपने बालों को कट करवाने गए हैं, तो हेयर ड्रेसर कैन समटाइम्स टेल कि यस एक जगह है कि जहाँ पे आपके बाल नहीं है। क्योंकि तो हमारे पास मेरे पास बहुत से पेशेंट ये कंप्लेंट लेकर आते हैं कि मैं अपने सलून गया, वहाँ देखा तो मैंने देखा कि यहाँ पे तो मेरे बाल नहीं है, तो आई वॉज वेरी स्केयर्ड। तो इसमें क्या है कि एक एंग्शियस स्टेट पेशेंट्स का बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है, जो हम देखते हैं कि ऑब्वियसली हेयर्स हमारे सबसे ब्यूटिफिकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, राइट? सो इसी को एलोपेशिया एरियाटा का नाम देते हैं। अब ये धीरे धीरे पूरे सर में भी फैल सकता है, ये बियर्ड में भी डेवलप हो सकता है, ये हमारी बॉडी में भी इन्वॉल्व हो सकता है, डिफरेंट पैटर्न्स के साथ भी इन्वॉल्व हो सकता है। उसको हम एलोपेशिया टोटालिस का नाम देते हैं या यूनिवर्सलिस का नाम देते हैं, जिसमें कि हमारे सर के सारे ही बाल चले जाते हैं, ठीक है? सो वही अब इसके कॉजेज जो हैं वो यही है कि ये कई बार तो किसी ऑटोइम्यून कंडीशन के साथ एसोसिएटेड होता है। कई लोगों में थायराइड की डिसऑर्डर्स होते हैं, या एक बीमारी है विटिलिगो या SLE, या इस तरीके की कुछ बीमारी जो ऑटोइम्यून सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, तो ये देखा जाता है कि समटाइम्स ही उसके साथ एसोसिएटेड होता है। सेकंड, ये भी देखा जाता है कि ये जेनेटिक थोड़ी सी इसमें एटियोलॉजी है, कुछ जीन्स होती हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, तो जिन लोगों में वो जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी है उन लोगों में ये होने के थोड़े से ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो ये रही ये जो मैंने डिस्कस किया, ये है एलोपेशिया एरियाटा और उसके टाइप्स के बारे में।
तो अभी गुंजन जी आपने हमें बताया कि अलग अलग प्रकार के एलोपेशिया क्या होते हैं, अब हम थोड़ा सा इस पर बात करते हैं कि अगर मुझे आगे चल के कभी होना है एलोपेशिया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो मुझे पता लग जाएगा अगर मेरे में मोटापा छा रहा है, तो उसी तरीके से क्या हमें पता लग सकता है कि एलोपेशिया हमें हो सकता है आगे चल के या है, क्या सिम्टम्स हैं इसके मेन?
देखिए इसमें सिम्टम्स जो होते हैं वो यही होते हैं कि अचानक से पेशेंट को ये दिखेगा कि उसके बाल किसी एरिया से किंक कर रहे हैं या गायब हो. ओके, सो यूजुअली इसमें कोई, इट इज एन एसिम्टोमेटिक पैच, इसमें ना तो कोई खुजली होती है ना कोई ज्यादा लालपन आता है, तो हमें दिखेगा कि एक स्मूथ सा एरिया है यूजुअली ओवल शेप का या कोई बॉल्ड पैच डेवलप हो रहा है. तो अगर पेशेंट मिरर में देखेगा तो उसको पता चलेगा कि सर में किसी किसी जगह पे या बियर्ड में किसी किसी जगह पे बाल उगना बंद हो गए हैं या वहां से चले गए. तो यही इसके साइन है. इसमें कोई दर्द नहीं होता है जिससे हमें पता चले कि भाई बाल टूटने का जो दर्द है वो महसूस हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं होता है. सो ये बेसिकली विजिबल जो हम शीशे में देखेंगे या कोई हमें नोटिस करा सकता है, आपका फैमिली मेंबर आपको बता सकता है जो आपको डेली देखता हो. एज सच ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा सिम्टम कॉज करता है कि पेन कर रहा है या बहुत इच कर रहा है, ऐसा इसमें ज्यादातर केसेस में नहीं देखा जाता है.
जी, तो गुंजन जी आपके पास पेशेंट्स आते होंगे एलोपेशिया वगैरह के, क्या कुछ
वेरी कॉमन डिसऑर्डर एलोपेशिया एरियाटा, सबसे कॉमन टाइप का एलोपेशिया है जो हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं.
तो क्या लोगों के जहन में एक मेंटल हेल्थ का एक मतलब रिलेटेड कुछ इशू भी हो सकता है क्या इससे, क्योंकि एलोपेशिया है आपको मतलब इट्स सो मच अबाउट योर लुक्स एंड सो मच अबाउट योर बॉडी दैट आप बाहर जाएंगे आप निकलेंगे बाल नहीं होंगे तो आपको अंदर से आपकी एक इनसिक्योरिटी आ जाती है क्योंकि हमने बालों को इतना महत्वपूर्ण दर्जा दे करके रखा है कि भैया ये तो बहुत
डेफिनेटली. देखिए हेयर्स तो इसी ये तो हमारी एक कहते हैं ना ब्यूटिफिकेशन का पार्ट है और डिफरेंट हेयर स्टाइलिंग लोग करते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज उनको अच्छा लगता है, शौक है करना, है ना. तो अगर किसी के बाल वीक हैं या अगर वो कुछ हेयर स्टाइल कर रहे हैं जिसमें उनका बॉल्ड पैच दिख रहा है तो ये तो एक देखा जाता है कि हाँ ऐसा उनको किसी ने टोक दिया, तो एक ये नॉर्म बन गया है कि गुड हेल्थ होनी चाहिए. वैसे तो अच्छी बात है, आपके हेयर्स अच्छे होंगे गुड होंगे तो इट्स अ साइन ऑफ गुड हेल्थ. अगर आपकी बॉडी में किसी न्यूट्रिशन की कमी है उसकी वजह से भी तो हेयर लॉस हो सकता है. सो ये थोड़ा सा मेंटल इश्यूज इस चीज़ से भी डेवलप हो सकते हैं कि जो हमारा एलोपेशिया एरियाटा है अर्ली स्टेजेस में अगर हम डायग्नोस करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से संभव हो सकता है विद द करंट ट्रीटमेंट जो हमारे पास अवेलेबल है. बट जो इसकी सीवियर वेराइटी है जैसे कि एलोपेशिया यूनिवर्सलिस है जिसमें बॉडी के सारे बाल ही चले जाते हैं, तो डेफिनेटली उसका इलाज करना हमारे लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है किसी भी डॉक्टर के लिए, क्योंकि वो नॉर्मल हमारी जो दवाइयां हैं या जो नॉर्मल हमारे इंजेक्शन हैं उससे इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करता है. उसमें हमें इम्यूनो सप्रेसेंट्स की आवश्यकता पड़ती है जो कि दवाइयाँ लंबे समय तक पेशेंट्स को चलती हैं जिससे कि उनके हेयर्स रीग्रो कर सके. ओके, सो टोटालिस और यूनिवर्सलिस एक ऐसे तरीके का एलोपेशिया है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट टू डील है, बट एलोपेशिया एरियाटा अगर हम सही समय पर डायग्नोस करते हैं तो यस इट कैन बी ट्रीटेड वेरी वेल विद द मेडिसिंस विच आर अवेलेबल. अगर आपको, मैं अपने लिसनर्स को यही कहूँगी कि अगर आपको अपने बालों की कोई पैच ऐसा दिखता है कि कहीं गंजापन दिख रहा है तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को तुरंत से तुरंत विजिट करिए ताकि हम उसको अर्ली स्टेजेस में जल्दी से जल्दी ठीक कर पाए. सो देयर आर वेरियस ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल.
कुछ लोग कहना है कि इसको हम ट्रीट किया जा सकता है क्योंकि एक ऑटोइम्यून डिजीज है, तो ज्यादातर ऑटोइम्यून डिजीजेस जो होती है वो ट्रीटेबल क्योरेबल नहीं होती है, लेकिन ये आपको लगता है
कुछ हद तक हम डिजीज को बढ़ने से रोक सकते हैं.
जी
ओके
जी.
तो अगर हम उसकी नर्व्स को जल्दी से जल्दी पकड़ लें, और हम दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन, मैं मेडिसिन का नाम यहाँ नहीं लूंगी, बट इसमें हम कुछ ऐसा लगाने की दवाइयों से पहले हम देखते हैं जो छोटा एलोपेशिया होता है, तो जो टॉपिकल मेडिसिन है उससे भी देखते हैं कि बहुत से पेशेंट रिस्पॉन्ड कर जाते हैं. इसके अलावा इसमें कुछ इंजेक्टेबल्स इंट्रालीजनल इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे कि ये भी देखा जाता है कि विद 3-4 सिटिंग्स बाल वापस से रीग्रो कर जाते हैं जब हमारे पास पैची एलोपेशिया है. यूजुअली हमारे पास जो पेशेंट विजिट करते हैं वो पैची एलोपेशियास के होते हैं, तीन है चार पैच है, एंड यूजुअली देखा जाता है कि तीन चार सेटिंग ऑफ इंट्रालिजनल स्टेरॉइड इंजेक्शंस के बाद उनकी बाल रीग्रो करने लगते हैं। बट जो थोड़ा सा हमारा डिफिकल्ट, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर इसको हमने टाइमली ट्रीट नहीं किया और ये बाद में कन्वर्ट हो गया टोटैलिस में या यूनिवर्सैलिस में, या हमारा ऑटोइम्यून जो पार्ट है वो इतना ज़्यादा हावी हो गया है हमारी दवाइयों पे कि अर्ली स्टेजेस में वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो यस ऐसे पेशेंट्स भी हम देखते हैं कि पूरी बॉडी के हेयर्स ही नहीं है, तो ऐसे केसेस में या पूरे स्कैल्प के हेयर्स नहीं है तो हमें फिर ओरल थोड़ा सा इम्यूनोसप्रेसेंट्स पेशेंट्स को देने पड़ते हैं। तो उन्हीं का कोर्स थोड़ा सा लंबा होता है, डेफिनेटली लंबी दवाइयाँ चलती हैं तो इट्स अ सेटबैक टू पेशेंट्स मेंटल स्टेटस। कोई भी बीमारी हो, नॉट ओनली एलोपेशिया, कोई भी इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर हो, ये सारे लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर्स होते हैं, तो किसी का भी जो कहते हैं मनोबल वो थोड़ा सा डगमगा सकता है। तो वही वो केस जो हम एकेडमी अवार्ड्स में हमने देखा कि उनके एलोपेशिया था, उन्होंने शायद ट्रीटमेंट लिया बट उनका शायद नॉन रिस्पॉन्सिव रहा या उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उन्होंने पूरा सर जो है बॉल्ड करा लिया। सो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई शर्म करने की बात है
जी,
हमें किसी को उसके लिए तंज नहीं कसना चाहिए क्योंकि कोई किसी बीमारी से सफर कर रहा है, वी शुड बी सपोर्टिव बिकॉज ये सारी बीमारियां स्ट्रेस से भी रिलेटेड है। अगर पेशेंट हमारा स्ट्रेसफुल कंडीशन में नहीं है तो डेफिनेटली हमारे दवाइयों का असर करने के चांसेस भी और बढ़ जाते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल जी। गुंजन जी, आई थिंक ये काफ़ी इनडेप्थ कॉन्वर्सेशन रहा आपके साथ, जहाँ पर आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही विविडली डिटेल्ड तरीके से हमारे लिसनर्स को समझाया सुनाया कि एलोपेशिया क्या होता है, इसमें मनोबल भी आपका गिर सकता है, कैसे अपना मनोबल ना गिराएं, कैसे ये क्योरेबल है। मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि डॉक्टर गुंजन ने बताया है आपको कि क्योरेबल है।
हम डेफिनेटली, मैं एक पार्ट आपको जरूर, एक और साहिबा सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं जरूर बताना चाहूंगी कि शुरू इसका जो रोल है, अच्छे बालों के लिए अच्छी डाइट होना बहुत जरूरी है। भाई कुछ भी बाल अगर ग्रो करेगा, एक कॉमन सा फैक्टर है कि उसको खाना चाहिए हमारे बालों को ग्रो करने के लिए, विटामिंस की, प्रोटीन्स की, न्यूट्रिशियस फूड की, एक बैलेंस डाइट की, फूड विच इज रिच इन बायोटिन इज वेरी वेरी नेसेसरी। ओके, सो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लेना, पनीर लेना, सोयाबीन लेना, और अच्छी सेहतमंद जो रीजनल और सीजनल चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, वेजिटेबल्स लेना, फ्रूट्स लेना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेना, तो ये सब लाभदायक हैं, हेल्दी हैं फॉर अवर गुड हेयर्स।
जी, तो माय डियर लिसनर्स, आपने सुना कि गुंजन जी ने क्या कहा है कि दवाई और ये सब तो ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले एक हेल्दी डाइट की ज़रूरत है, और हेल्दी डाइट के साथ ही साथ आपके बाल भी स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और आप अपनी जो अंदर की कोई और भी बीमारी है, नॉट जस्ट एलोपेशिया, उससे लड़ सकेंगे। तो थैंक यू गुंजन जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन अ पॉडकास्ट एंड शेयरिंग योर एमिनेंट नॉलेज विद ऑल ऑफ अस, हमको सबको बताने के लिए कि एलोपेशिया क्या है, उससे कैसे बचा जा सकता है।
बिल्कुल, थैंक यू सो मच साहिबा,
थैंक यू
टू ऑल माय
लिसनर्स। तो अब जबकि आपको किसे कहते हैं, आप भूल कर भी किसी बीमारी के बारे में भद्दा मजाक शायद नहीं करेंगे, मतलब ये एक कॉमन ह्यूमन डिसेंसी होती है, राइट? और क्योंकि हम 2022 में हैं और लोगों के बॉडी अपीयरेंस, उनकी बीमारियों पर, उनके धर्म ईमान और जात पर उनका मजाक बनाना इज नॉट फनी एनीमोर। मतलब दुनिया में सियासत के नाम पर जो ढकोसला हम देख रहे हैं, ऊपर से नीचे तक हर जगह कुछ ना कुछ बताने को है, सुलझाने को है, सुलटाने को है, हंसाने को है, रुलाने को है, वहां अगर आप अब भी लोगों के धर्म जात और दिखने पर चुटकियां ले रहे हैं, उस पर चुटकुले बना रहे हैं, तो आई थिंक इट्स हाई टाइम फॉर यू टू चेंज द कोर्स ऑफ योर करियर। और रही बात विल स्मिथ की, तो मजाक चाहे कितना भी घटिया हो, उस पर किसी को सबके सामने तमाचा खींचकर मार देना उस मजाक जितना ही गलत और घटिया है। विल स्मिथ एक बहुत बड़े और जाने माने अभिनेता है, मैन इन ब्लैक, पर्सूट ऑफ हैप्पीनेस में शानदार अभिनय से इतिहास रचने वाले स्मिथ को ऐसा क्यों लगा कि जेडा, जो उनकी बीवी है, वो खुद उस भद्दी टिप्पणी पर जवाब नहीं दे सकती या फिर वो खुद उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकती। ये कबीर सिंह बनकर थप्पड़ जड़ देना कहां की सभ्यता है। और अब बात पहुंच गई है उन दोनों के ओपन मैरिज तक। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी, ओपन मैरिज ऐसा होता है जिसमें दोनों हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो ऐसा एक अग्रीमेंट करते हैं कि दे कैन स्लीप विद अदर पीपल, वो दूसरों के साथ रह सकते हैं, रात या दिन गुजार सकते हैं, लेकिन आपसी समझ और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, कंसेंट से। तो अब कई लोग इस पर मीम्स भी बना रहे हैं कि भैया उनको अपनी बीवी के बॉयफ्रेंड से एतराज नहीं है, लेकिन अगर उनकी बीवी की बीमारी पर किसी ने एक भद्दा मजाक कर दिया तो उस पर उनका मुंह बन गया, उन्होंने तमाचा जड़ दिया। भाई वो उनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है, वो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो कंसेंशुअल है, सबसे बड़ी बात। तो उसमें आप ना घुसे तो बेहतर है, लेकिन आप किसी का मजाक तो नहीं उड़ा सकते ना उनकी बीमारी को लेकर के। तो आई थिंक लोगों को, कॉमेडियंस को, जनता को थोड़ा यहाँ पर बाउंड्रीज देखने की जरूरत है कि वो किस चीज पर क्या मीम बना रहे हैं, और स्पेशली किसी की प्राइवेट ओपन मैरिज इस तरीके से जोक्स के साथ कंपेयर करना, आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी पोलाइट एंड अ कर्टियस वे टू टेक दिस फॉरवर्ड। बाद में हालांकि विल स्मिथ ने माफी भी मांगी, मगर व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन, राइट? बस अब कॉमेडियंस शायद लोगों की बीमारियों पर कॉमेडी करना थोड़ा कम कर देंगे, या हो सकता है बंद भी कर दें, और अगर करेंगे तो उम्मीद करेंगे कि भैया विल स्मिथ फ्रंट रो में ना बैठे हों। फिलहाल मैं लेती हूँ आपसे विदा, मिलूंगी अगले FYI में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुनते रहें एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर FYI। नमस्कार।
हर पल बदलती दुनिया में कोई अपडेट मत करो मिस, डाउनलोड करो एबीपी लाइव ऐप और जानते रहो।
This is an ABP Life podcast.